प्रकाश करते हुए उससे भी आगे बढ़े, बढ़ करके कहाँ पहुँचे,
महाकालपुरम
उसको भी पार करके कर्णाब्दीशाली कर्णाब्दी समुद्र में वहाँ पर जहाँ विष्णु रहते हैं, महाकाल जिनका नाम है, सहर्ष शीर्षा जिनका नाम है, ब्रह्माश्यागी के जो उपास्य गर्भोदशाई हैं उनके भी मूल हैं, वहां पर पहुंचे। उनको देख करके उन लोगों ने वहां पर जो विष्णु थे भगवान नारायण इनका बड़ा आदर किया, इनके अंश हैं कृष्ण के, इसलिए उन्होंने गद्दी छोड़ दी और कृष्ण को वहां पर और अर्जुन को बिछा करके बड़ा आदर। कैसे आप लोग पधारे, तो हम लोग इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा जैसे बच्चे वो सब यहीं पर हैं, मैं केवल आप लोगों के दर्शनों के लिए ही इनको लाया था,
करें जाके दर्शन कर लेते ऐसे कुछ गली वाले दर्शन भाई।
द्वारका में जाने से दर्शन नहीं होता, द्वारका उससे बहुत ऊंची है, उसके ऊपर बैकुंठ लोग, बैकुंठ से ऊपर
तो उधर विष्णु द्वारका नहीं जा सकते हैं।
नहीं वहाँ जाएंगे तो द्वारकाधीश हो जाएंगे, उनका जाना इनका जाना नहीं, तो बहुत ऊपर की चीज है द्वारका उनके लिए, उनका यही अंश ही यहाँ पर रहेगा इसे। और द्वारकापुर में आएंगे तो जैसे ब्रह्मा जी गए, देखा जो लाखों कोटि ब्रह्मा वहाँ पर इकट्ठे हैं और इनको भीड़ में भीतर पहुँचने की इनको जगह ही नहीं मिली, वंदना करने के लिए भी इनको अवकाश नहीं मिला, ऐसे हो सकता था जिनके लिए
कारण साहब विष्णु तो एक है, ब्रह्मा बहुत है, कारण साहब विष्णु बहुत
हो सकता है कि कोई ऐसा ऐश्वर्य प्रकाश कर दे, वो नहीं उनको इस क्योंकि वो लीला पारायण है, इसलिए वो हमारे यहाँ आएंगे हमको दर्शन देंगे। बाकी होगी कोई बात ऐसी मजा मई जीवयोदिक्षुना मया पोनी तो भूमि धर्म गुप्त। ये जो द्विजों की जो आत्मा है बच्चों की, मैं आपके इस रूप को दोनों को देखने के लिए जीवयो मैंने अर्जुन और नर और नारायण के रूप में कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए मैं दिदिक्षुना मैंने इच्छा से अभिलाषा से
देखने की इच्छा,
मैं आपके इन सब बच्चों को यहाँ पर ले आया हूँ, भूई अपने धाम में ले आया हूँ बच्चों को। अब धर्मगुप्त ये कलावतीर्ण आप जो दोनों हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, कलावतीर्ण माने कला के रूप में या कला के साथ में, कला के रूप में आप आए हैं, मेरे कला हैं, मैं अंशी हूँ, हमारे कला के रूप में ऐसा अर्थ नहीं होगा, किंतु साधारण लोग ऐसा ही अर्थ होगा। मैं इसलिए ले आया था ये आप मेरे कला हैं, कला के रूप में हो, ऐसा नहीं। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के पहले नहीं दूसरे श्लोक में वो क्या अंशेन सह माने अंश के सहित में आया, ऐसे ही समस्त कलाओं के साथ में, अतः तो समस्त जितने भी विष्णु तत्व हैं सब शक्तिमान तत्व के सहित आप अवतीर्ण में धर्म की रक्षा करें। धर्म की रक्षा मैंने क्या, कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन इत्यादि की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, और ये जो मुक्त पुरुष हैं उनके क्या क्या धर्म हैं उसकी भी रक्षा के लिए, उन चीजों को देने के लिए यहाँ तक कि गोपी प्रेम तक ऊपर में पहुंच जाइए, ये सब धर्म गुप्त के अंतर्गत है। आप अवतीर्ण हुए हैं, अवतीर्ण हुए भरासुराम हकवाई भूरस परेतम। अर्थात जल्दी से आप भूमि का भार हरण कर और असुरों का संहार कर उनको जल्दी से मेरे पास में भेजिए। ये नहीं कहा जैसे आप आ जाइए जल्दी से, भूमि का भार हरण करके उन असुरों को भेजिए मेरी मुक्ति के लिए। कालपुरम है ना,
कारागार,
उसमें कौन सी मुक्ति? ये असुरों को, इसलिए भरासुरान असुरों का भार हरण करके उनको भेजिए जिससे कि वो हमारे में
हमारे दिल का नहीं।
तो यहाँ पर ये बताया कि मैं तुम्हें दर्शन करने के लिए, तुम दर्शन करने के लिए, मैंने आप लोगों के इतने सुंदर चारों दर्शन है उसको दर्शन करने के लिए मैं दर्शन के लिए आया। इसलिए भगवत तत्वों का भी चित्त आकर्षण करने वाले उनका है। जब द्वारकाधीश को ला रहे हैं तो सिंगारस वाले कृष्ण की तो बात ही क्या है, ये तो द्वारकाधीश वाले को ला रहे हैं, तो उनका तो रूप कितना होगा। फिर दूसरा एक और उदाहरण दे रहे हैं, यहां दिया शक्तिमान तत्व के लिए, अब यहां दे रहे हैं लक्ष्मी आदि, लक्ष्मीकांत आदि का ये दिया, और यहां देंगे अब लक्ष्मी आदि नारियों के लिए आकर्षण की बात। कश्यानुभावो अश्रन देव विस्महे तवांग्रेणो स्पर्शाधिकार जद वंशयासी ललना चरे तपो विहाय कामानुसुचिरं धीतव्रता। कश्यानुभावो अश्रन देव विस्महे, जब नाग पत्नियां अपने पति की रक्षा के लिए काली दमन कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। कब प्रार्थना किया? अब तक शांत बैठी हुई थी, सोच रही थी कि हम लोग विधवा हो जाए। ये भगवान का विरोध कर रहा है कृष्ण का, इतना सो कोमल उनके, और उसमें ये काट रहा है वहां गले में हृदय में जिसे अभी तुरंत मर गया। ये बड़ा भारी निष्ठुर है, इसका मर जाना ही अच्छा है, कृष्ण का विरोधियों का जगत मराना अच्छा नहीं, इसलिए मर जाए हम विधवा जाए। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण के प्रभाव को देख करके जो सोचा, ओ गरुड़ हमारा कुछ भी न कर सके, किंतु ये गरुड़ से भी बड़े दुर्धर्ष हैं, आज उनके पैरों की तात्क्षणिक भी भार में सहन करने में असमर्थ हूं, ये है कौन? कहीं हमारी पत्नियां हमको उचित सलाह देती थीं, इनसे विरोध न करो, कहीं वही विष्णु तो नहीं है? आप समझा तो वो नारायण का शरणागत होकर के प्रभु मेरी रक्षा करे, इस प्रकार से कहा। नाग पत्नियों ने देखा जी इसका भाव बदल गया,
शरणागत हो गया,
शरणागत हो गया, ठीक। तब वो प्रभु से प्रार्थना, कृष्ण के लिए प्रार्थना, ओहो प्रभु आप इसको छोड़ दीजिए, इसको नहीं छोड़ने से, इसको मार देने से हम विधवा हो जाएंगे, इसलिए आप कृपा करके इसको जीवन दान कीजिए। हम तो देखती हैं, ये कह रही हैं कश्यानुभावो अश्रन देव विद्महे, हम लोग इस निर्णय नहीं कर पा रही हैं कि इनके चरण कमल, आपके चरण कमलों की धूलि को पाने के लिए लक्ष्मी स्वयं इसके लिए तपस्या करती हैं लालसा के लिए, और इसको ये अपने आप आ गया, ये चाहता है कि इनके चरणों को उतार करके फेंक दें, और आप इतने दयालु अपने चरणों की धूली इसके केवल एक सिर ही पर नहीं, इसके जितने भी शरीर हैं सर्वत्र ही हमारे चरणों की धूली, जिस चरणों की धूली के स्पर्श के लिए ब्रह्मा और शंकर की तो बात ही क्या, ये स्वयं लक्ष्मी देवी भी सवांग रेणु स्पर्शाधिकार उनको नहीं मिली और इसको अधिकार मिल गया इस विषय के लिए, और नहीं चाहने पर भी जोर जबरदस्ती दिया जा रहा है। न जाने कौन कौन ये पूर्व जन्म में तपस्या की थी अथवा क्या किया था, हम नहीं जानते। कश्याम भाव अश्वन देव, हम नहीं जानते हैं कि इसका कैसे, इसका भगवान की चरण धूलि को स्पर्श करने के लिए इसको अधिकार मिल गया। भगवान का ऐसे चरण धूलि को पाने के लिए तपस्या से होगा, कोई तपस्या से नहीं, साधारण साधन भजन से नहीं, ये तो भगवान की है की कृपा है, न जाने कैसे हो गया। यदि हो गया होगा तो बस उनकी पत्नियों की कुछ ऊपर में भगवान की कृपा होगी इसलिए हुआ, अन्यथा ये होना असंभव, उसी के लिए वो कह रही है। जदवांछा श्री लल्ला चरोत्तपे, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी जी सब समय भगवान नारायण की सेवा करती हैं, किंतु उनके अंदर में भी ये वांछा हुई। कैसे हुई, कैसे उनको हुई, एक तो सर्वांतर्यामी है इसलिए भी हो सकता है, अथवा नारद इत्यादि जी के कहने से हुआ होगा, जैसे रुक्मिणी इत्यादि को बतलाया नारद जी को, ऐसे इन्होंने बतलाया होगा, सुन करके कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो और वृंदावन में आकर के बेल वन में बहुत तपस्या की उन्होंने किया। जदवांछा, जिनकी इच्छा से, किसके लिए, उस चरण की धूली को स्पर्श करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वो वृंदावन में बेल वन में आकर के तपस्या की, किंतु कहीं नहीं लिखा जी मिल गए कि नहीं, ये नहीं लिखा। श्री ललना, ललना मैंने क्या, ललना ललना माने स्त्री होता है,
अत्यंत सुंदरी स्त्री,
अत्यंत अनुपम सुंदरी, साथ ही साथ में अत्यंत सुकोमल स्निग्ध सुंदर सुगंध युक्त पद्मगंधा श्री ललना आचार्य तपो कठोर व्रत किया। इधर में कोमल अंग उनके और वो इतना कठोर तपस्या किया किंतु उनको मिली नहीं, और इसको वो चरण की धूली मिल गई। विहाय कामान, कैसे, अपनी समस्त कामनाओं को छोड़कर। लक्ष्मी जी की क्या कामना हो सकती है, वैकुंठ में जाते हैं उनमें कोई कामना होती है कि नहीं, सब जगत के समस्त कामनाओं को छोड़ करके एकमात्र प्रभु की सेवा की कामना। लक्ष्मी जी में प्रभु नारायण की चरणों की सेवा करने के अतिरिक्त और कोई इच्छा, इसको भी उन्होंने छोड़ दिया। विहाय कामा, कैसे कैसे सेवा उसको भी छोड़ दिया, और छोड़ करके यहाँ पर बैठी हुई हैं, तपस्या कर रही हैं। सुचिरं धृत व्रता, बहुत दिनों तक, और धृत व्रता मैंने व्रत मैंने क्या, खाना पीना छोड़ दिया, फल भी नहीं दिया, दूध भी नहीं लिया, पानी भी नहीं लिया, हवा भी छोड़ दिया, ध्रुव जितनी तपस्या किए थे उनसे भी ऊपर, ऐसी कठोर तपस्या उन्होंने की बहुत दिनों तक। नारायण की भी परवाह नहीं की सेवा की, सब वैसी ऐसी कामना भी छोड़ दी, संसारिक तो छोड़ा ही, वो भी कामना छोड़ करके तपस्या की। शायद कृष्ण मिले होंगे भी या आए ही नहीं होंगे, जानते होंगे इनके हृदय की बात, जैसे इनसे होगा नहीं, वो कहेंगे कृष्ण आकर के, अच्छा तुम वर मांगो, जब मैं ब्रज में गोपियां जैसे आपके साथ में नित्य इत्यादि करती हैं, मैं उसी तरह से राष्ट्र में सम्मिलित हूँ और आपकी सेवा कर सकूँ, मैंने श्रृंगार रूप है ना, इसलिए श्रृंगार रूप में मैं आपकी सेवा करूँ। कृष्ण ने कहा जैसे एक बात करो, बहुत सीधी साधी सी बात है, तुम गोपी के रूप में जन्म ग्रहण करो और फिर दूसरे गोप से शादी हो जाएगी और फिर वहाँ मैं रहूँगा, वहाँ पर हमारे राष्ट्र में सम्मिलित हो जाएंगे। इस बात के लिए वो राजी नहीं हुए। मैं ब्राह्मणी गोपी कैसे बनूं और
फिर
गोपियों के साथ, गोपों के साथ में हमारी शादी होगी, आपके साथ में शादी होगी, ये तो मुझे मंजूर है, किंतु वो शादी उन लोगों गोपों के साथ में शादी हमको मंजूर है। तो उन्होंने कृष्ण ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में नारायण आए, अरे मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ कितने हजारों वर्षों से और तुम यहाँ पर बैठी मना जुना करके कह सुन करके फिर इस तरह से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं। अर्थात लक्ष्मियों को भी कृष्ण के दर्शन की और उनके चरणों की धूनी की उनको आकांक्षा होती है, किंतु यह भी उनके लिए संभव नहीं, क्योंकि एक चीज में वो प्रतिष्ठित है। इसीलिए वो ब्राह्मण पत्नियां जो मथुरा की थी, यज्ञ पत्नियां, उनको भी इसी कारण से नहीं मिले। तब हाँ उनके लिए एक आशा है उस जन्म के बाद, उस जन्म में तो नहीं मिले।
अच्छा रासलीला में ये लोग सम्मिलित नहीं थी?
कौन?
ब्राह्मण का,
ब्राह्मण पत्नी के रूप में वो नहीं सम्मिलित हो सकते,
क्योंकि जैसे गोपियाँ गुरुमय शरीर त्याग करके गए तो ये भी ऐसे जा सकते
नहीं,
गोप के साथ ही जा
सकते। उन्होंने गुरुमय जय छोड़ दिया, ब्राह्मणियों ने भी जिनको रोक लिया कर वो कृष्ण से आकर मिल तो गए, किंतु राशि इत्यादि में उनकी लीला में सम्मिलित नहीं, क्योंकि उसमें अभी कषाय है। वो जन्मांतर में तपस्या करते 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 भाव आने पर गोपियों का अनुगत्य में जब भजन करेंगी ना, तब जा करके फिर दूसरे जन्म में वृंदावन में जन्म होकर के गोपी शरीर में आ करके गोपियों के नित्य सिद्धाओं के साथ में आएंगी और तब फिर उनकी आहता। ऐसे नहीं, श्रुतियों ने ऐसा किया, इसलिए श्रुतियों का हो गया।
ब्राह्मणियों को कौन सा कषाय था?
यही तो ब्राह्मण होने का कषाय। इसलिए कहते हैं जिसे लक्ष्मीकांत आदि और लक्ष्मीकांता आदि ये सब लोगों को चित्त को हरण कर लेते हैं कृष्ण अपने रूप से, इतना अधिक तो साधारण लोगों की बात है। आप माधुर्य हरे आप नारायण, आप जिसको ले आ रहे हैं उन्होंने आत्म पर्यंत आप उसके लिए ला रहे अपना माधुर्य, अपन माधुर्य हरे आप नारायण, अपना अपन ही चाहे करी त्यागिंग, अपना ही अपना देख करके मुग्ध हो जाते हैं और अपने रूप का आस्वादन करना चाहते हैं कृष्ण। ये ऐसे कृष्ण ऐसा किसी भी रूप में नहीं है, किसी अवतार में नहीं है, राम इत्यादि में भी नहीं है, द्वारकाधीश में भी नहीं है, और विष्णु इत्यादि राम इत्यादि के तो बात ही क्या, ये किसी में भी नहीं है। इसलिए कृष्ण का यह रूप स्वयं रूप, और स्वयं रूप में भी ब्रजेंद्र नंदन होने स्वयं रूप में भी यह श्रृंगार रसराज मय मूर्ति है। अब बतलाने अपने आप कैसे उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है, उसके लिए ललित माधव का एक श्लोक यहाँ पर उदाहरण के रूप में दे। अपर कलित पूर्व कष्ट चमत्कारकारी प्रतिमम गरियानेश माधुर्य पूर्व अयम अहम अपि हंत प्रेक्ष जा चित्त लुब्ध चेता सरसम काम ए राज। अपरिकलित, अपरिकलित मैंने जो पहले कभी अनुभूत नहीं हुआ, अपरिकलित कभी अनर्पित चरण चिराग जैसे है, कभी भी नहीं दिया गया यहाँ पर, कभी भी अनुभूति आस्वाद्य जो नहीं हुआ। अपरिकलित पूर्वम कश्च चमत्कारकारी, अत्यंत चमत्कारकारी, चमत्कारी किसको कहते हैं, जो कभी भी न दिख पड़े अत्यंत सुंदर सुहावना मधुर हो और अद्भुत हो, जो चित्त में क्षोभ पैदा कर दे,
विस्फारित नेत्र से देखे,
इसको कहते हैं चमत्कारकारी
है?
जो कभी कृष्ण का रूप ही ऐसा है, नौ नवायमान, जब भी कोई देखेगा तब नित्य रूप में देखेगा, या श्रृंगार विशेष मम गरियाने समाधुर्य पुरति मम, कृष्ण कह रहे हैं, या रूप देख करके मेरे मन में भी इसकी गरिमा देख करके, गरियान ऐसा इतना गरियान माने सबसे श्रेष्ठ यह रूप है, माधुर्य में, कोमलता में, मधुर में, सब विषयों में, विशेष करके चार रूपों में, रूप
गुण लीला
लीला वेणु माधुरी में, माधुर्य पूरा, माधुर्य पूरा मैंने एक तरल माधुरी है, माधुर्य किंतु तरल, और एक है
घना,
घना घना सभी घना, घना मैंने पूर्व को कहते हैं घना, माधुर्य पूर, माधुर्य का यह पूर है घना भाव, आयम अपी हंत, हंत मैंने
क्यों हंत विस्मय,
विस्मय नहीं, उनको बड़ा खेद है,
खेद
है किंतु यहाँ पर है खेद, क्यों खेद, मैं इसको पाना चाहता था मुझे मिला नहीं इसलिए खेद, मैं राधिका की भांति इस रूप को आस्वादन करना चाहता था किंतु मेरे लिए संभव नहीं, क्यों क्यों नहीं हुआ, राधिका जैसा भाव हमारा अंदर में नहीं है, बिना भाव के वो देखा नहीं, वो चीज की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए करें कि राधिका का यदि भाव होता है हमारे अंदर में तो कहीं संभव हो सकता है, उनमें है महाभाव अपना, इनमें वैसा नहीं है, आश्रय जाति महाभाव इनमें नहीं, अपना राधिका जैसा भाव नहीं, इसलिए राधिका के भाव के लिए उन्होंने फिर से चैतन्य महापुरुष रूप में आकर के फिर उसका आस्वादन किया, तो अयम अपी हंत प्रेक्ष लुब्ध चेता सरसभम उपभोक्तुं कामे राधिके, सरसम मैंने उत्कंठा के साथ अत्यंत उत्कंठित होकर, और सरसम मैंने केवल उत्कंठा नहीं, सबने उत्कंठा हो सकती
है,
काम युक्त प्रबल उत्कंठा, जिसको उज्ज्वल नील मणि में काम जो बताया है, प्रेम कृष्ण के प्रति वैसा कमात्मिका भक्ति ऐसे से युक्त होकर के जो परम उत्कंठा उनसे मिलने की होती है, ऐसे हमारी भी उनकी प्रति उत्कंठा, किंतु मैं उसे पा नहीं सका, कहते हैं कि जिसे ये अपने लिए कृष्ण भी आशा, इसलिए कृष्ण का यह रूप जो है, कृष्ण के समस्त रूपों में, यहाँ तक कि स्वयं रूप में भी, बाल्य पौगंड नव्य किशोर माने आदि किशोर, अंत किशोर मध्य किशोर इत्यादि, ये सब में परम सुंदर वो चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुपत उपाध्याय के यहाँ जो श्लोक सुना था, ऐसा उनका श्लोक था,
श्यामम एव परम रूपम,
श्याम एव श्यामम एव परम रूपम पूरी माधुरी
परा वय कैसरकम
धैयम
आत्मैव परुरस,
एक तो संक्षेपे कहिलो कृष्ण एव स्वरूप, अब इससे कोई अधिक स्वरूप कृष्ण का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ माधुर्य सौंदर्य जो कुछ था इन्होंने परिपूर्ण रूप से, यहाँ तक कि और की तो बात क्या, स्वयं कृष्ण भी इस रूप को देख करके, यही तो संक्षेप कहिले कृष्ण रसो, अब ये कृष्ण कौन हुए, पहले तो समस्त षड़ैश्वर्य पूर्ण, दूसरा हुआ सच्चिदानंदमय, सच्चित आनंदमय, सर्वशक्तिमान है, सर्व कारण कारण है और सब रसों के आश्रय और
विषय
विषय, और उस पर भी नौ नवायमान चार माधुरियों से युक्त हैं, रूप माधुरी गुण माधुरी लीला और अखिल रसामृत मूर्ति है और सबके चित्त को आकर्षण करने वाले हैं। यहाँ तक कि और भगवानों की तो बात ही क्या है, स्वयं जो भगवान स्वयं कृष्ण हैं, उनके भी चित्त को हरण करने वाले
नवीन मगन,
और उनकी समस्त कांताओं को राधा से आरंभ कर जितनी भी उनकी कांताएं हैं देवलोक तक में भी सबके चित्त को हरण करने
फिर मूर्तिमान श्रृंगार
और मूर्तिमान श्रृंगार इत्यादि, ये कृष्ण का ये परिचय। अच्छा, वात्सल्य रस के ये विषय होंगे कि नहीं? ये कृष्ण नहीं, सख रस के होंगे नहीं, यहां का रूप केवल प्रकट होगा ऐसे भाव वाली गोपियों के अतिरिक्त और कहीं ये प्रकट ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं होगा। इसलिए यह संक्षेप में कृष्ण का ये तत्व वर्णन है। अब एवे कही संक्षेपे कही राधा तत्व रूप, अब कितना मिले अब वे कहूँ एवे कही राधा तत्व रूप, अब राधा तत्व कृष्ण तत्व निरूपण करने में राधा जी को छोड़कर के कृष्ण का तत्व निरूपण नहीं हो सकता, ऐसे राधा जी का तत्व निरूपण करने में कृष्ण का तत्व नहीं होगा तो नहीं। अच्छा, मान लो कि हम भक्तों का कोई स्वरूप वर्णन कर रहे हैं
तो भगवान आए
तो भगवान का स्वरूप नहीं वर्णन करने से होगा,
संपूर्ण नहीं होगा,
नहीं संपूर्ण माने होगा ही नहीं। और भगवान का रूप जब वर्णन करना होगा ना तो भक्तों का जरूर होगा, भगवान का रूप वर्णन करेंगे तो गुरु जी को छोड़ करके वर्णन करें तो होगा ना, भक्तों के प्रधान तो गुरु जी हैं, इसलिए गुरु जी का भी जरूर वर्णन करना पड़ेगा, बिना गुरु के भगवान का नहीं और भगवान के बिना गुरु का। अब यहाँ पर राधा जी का तत्व वर्णन करना है, अच्छा कृष्ण का रूप जो वर्णन किया हुआ अंत में ये लाए राधि केव समस्त रूप वर्णन किया, किंतु अंत में ये क्या बतलाया, कृष्ण का तत्व बतला रहे, उसमें राधिका के धातु ही कृष्ण को अपने रूप को आस्वादन करने की अभिलाषा, किंतु खेद हुआ जब मैं इसको कर नहीं सका आस्वादन राधिका के धातु, क्यों, राधिका में ऐसी चीज है जो हमारे अंदर नहीं, वहां पर वो पराभूत हो गए उस तत्व के, क्योंकि कृष्ण ने अपने मुख से ही बतलाया है, वो राधिका के लिए ही बतलाया है, न पा रहे हम राधिका के साथ में ही कृष्ण का ऐसी रसराज मूर्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी, गोपियों के साथ में भी नहीं होगी, होगी किंतु इतनी चमत्कारी चमत्कारकारी रूप नहीं होगा जैसे राधिका के साथ में होगा, वहां पर कृष्ण संपूर्ण रूप से प्रसन्न प्रसन्न चित्त रहे, और यदि राधिका जी न रहे और सब गोपियां रहें तो कृष्ण का मुख प्रसन्न रहेगा, मालूम होगा जब कुछ चीज का अभाव रह गया, इसलिए कृष्ण में उस रस में भी अभाव हो, इसलिए उनके साथ पूरा रहने में ही कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य सर्वविध ऐश्वर्य मोहनत्व इत्यादि सब प्रकाश। उसी प्रकार से हमारे अभी बृहद भगवतामृत हम लोगों ने रसाला जो पाठ किया
रसायन
रसायन, उसमें देखा था जहाँ जहाँ कृष्ण का गोपियों के साथ में संबंध है, यहाँ तक कि भीष्म पितामह को लिया और किसका लिया, अक्रूर जी का लिया, उद्धव जी का लिया, ये सब लोग जो कृष्ण रूप का वर्णन कर रहे हैं उस सब में राधिका जी को जहाँ या गोपियों को रहे कहीं वहाँ सुंदर स्तुति हुआ और कृष्ण उसको ग्रहण श्रवण करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कृष्ण का चित्त संपूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं, उनको प्रसन्न करने के लिए आचार्य यही। तो कृष्ण आप राधा जी का जब वर्णन करें तो यह बतला है कृष्ण अनंत शक्ति साथे तीन प्रकार। कृष्ण में अनंत शक्ति और अनंत शक्ति एक पराशक्ति से प्रकाशित है। कृष्ण एक हैं इसलिए उनकी शक्ति भी एक, अनंत शक्तियां नहीं है किंतु उसके प्रकाश
एक शक्ति के ही अनंत प्रकाश।
जैसे एक कृष्ण के कोटि कोटि प्रकाश हैं ऐसे एक ही शक्ति के कोटि कोटि प्रकाश हैं, अनंत प्रकाश। तो अनंत शक्ति उसमें तीन प्रधान है, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति ना। ये सब किस लिए बतला रहे हैं? ये सब नहीं बतलाएंगे तो राधा जी की धारणा नहीं आएगी, राधा जी की धारणा नहीं आएगी। एक आदमी ने कहा अच्छा ये कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े विद्वान हैं, सुनेगा महाप्रभु कितने बड़े विद्वान हैं। एक पंडित थे बड़े स्तुतिधर हैं और संसार के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं भट्टाचार्य जी और कौन
चक्रवर्ती
विद्या के चक्रवर्ती और
विद्यालंकार नैरत्न
जितने षट दर्शनाचार्य जी सब विषय में पारंगत हैं विद्वान और उनको एक सेकंड के अंदर में परास्त कर दिया एक प्रश्न के उत्तर में। अब बतलाओ जी वो महाप्रभु की कैसे विद्वान, केशव काश्मीर को परास्त कर दिया ने? और विद्वान सुने लगे कैसे, विद्वान जगत संसार में जितने थे सबको दीक्षा देने वाले, सन्यासियों को भी सन्यासी बनाने वाले, कैसे बड़े विद्वान जो गए विद्या पढ़ने के लिए कहाँ
मिथिला
में, और जब उन विद्या पढ़ लिए न्याय इत्यादि नव्य न्याय बहुत सूक्ष्म विवेचना, एक चूर को लाख भाग किया जाए उस पर भी विचार करने वाले ये अनुमान इत्यादि सब इसमें कौन चीज कैसी होगी उसी के लिए ही कितना विचार अनुमान इत्यादि उस पर ये विचार करने वाले। तो वो आने लगे तो उन लोगों ने उनकी पुस्तकें सब ले ली, ये बड़ा मेधावी लड़का है ये जाकर के जहाँ जाएगा स्कूल खोल देगा वहीं पर ये विद्या आरम्भ हो जाएगा, मिथिला का नाम टूट जाएगा,
छत्र में कम हो जाएगा,
बस सब पुस्तकें ले। बड़ा इनको दुख हुआ, फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं बस वहाँ से चल दिए और अपने सीमा में आए, अपने उस सीमा में रहते मिथिला के तब तो वो लोग गड़बड़ करेंगे इसलिए अपनी राज्य की सीमा में बंगाल की सीमा में आए तो सोचा जैसे अब तो भूल जाएंगे जल्दी से इसलिए वहीं पर बैठ करके और सब जितना पढ़ा था वो सबको लिख दिया, पूरा पुस्तक के पुस्तक जितनी पुस्तकें पढ़ी थी ना सब लिख दिए लिख करके और पुस्तक। ऐसे धुरंधर विद्वान और महाप्रभु जी को उनको हराने में कितना, जो इस सूत्र से उन्होंने निर्विशेषवाद की स्थापना की थी, निराकार की स्थापना कर थी, उसी श्लोक से ही उन्होंने प्रमाणित कर दिया ये भगवान का रूप है, ये कृष्ण ही रूप है, वो निराकार नहीं है, जगत असत्य नहीं है, वो परम सुंदर गुणवान गुणवान भगवान, उसी एक सूत्र के द्वारा ही कर दिया, उनकी बोलती भी बन गई। तो महाप्रभु जी कैसे विद्वान है इसको कहा जाएगा ना, ऐसा बोल होना चाहिए, ऐसे विद्वान है कैसे, जा रहे थे बचपन में न्याय की न्याय पढ़ रहे थे, न्याय के छात्र नहीं थे किंतु न्याय जानते, न्याय की एक कुसुमांजलि कोई ग्रंथ है उस पर टीका व्याख्या लिखना, तो उनके साथ साथ में वो पंडित थे क्या नाम जिन्होंने 24 तत्व लिखे हैं स्मार्ट थे,
रघुनंदन
रघुनंदन भट्टाचार्य थे बहुत विद्वान अपने को समझता था वो लड़का छात्र, बहुत ब्रिलियंट छात्र, महाप्रभु से कुछ ऊपर पड़ता था। एक दिन बाय चांस दोनों नौका में कहीं बैठ करके जा रहे थे, तो उस लड़के ने कहा कि हमने इस पर एक पुष्पांजलि पर
टीका
रखी। तो महाप्रभु ने कहा जैसे हमने भी थोड़ी सी लिखी, तो उसने कहा कि देखें, तो महाप्रभु जी ने उसको दे दिया। वो पढ़ा तो पढ़ते गया, देखता गया और उसका मुख उतरता गया, जितना ही पढ़ा उतना ही मुख उतरता गया और आंसू छलकते छलकते अंत में तो उसके आंसू एकदम गिरने लगे और उसने पुस्तक बंद कर दिया। बहुत दुखी हो गया। अजय सखे आप बड़े दुखी हो गए, क्यों रोने क्यों लगे, क्या बात हुई इसको पढ़ने से? तो हमने लिखा था, सोचा था कि विश्व में इसके टक्कर का और कोई ग्रंथ नहीं है और जगत के बड़े बड़े विद्वान लोग उसकी मान्यता करेंगे। मैं देखा कि तुमने जो भी था उसके चरणों की धूली में भी ये नहीं लगेगा, इसको कोई पूछेगा ही नहीं, अरे इसलिए रो रहे हो? बस उठाया और पुस्तक गंगा में डाल। कैसे विद्वान होंगे ये बताओ? एक विद्वान के लिए बतलाने के लिए जब तक ऐसा नहीं कहा जाएगा तब तक विद्वता
उत्कर्ष समझ
लुप्त किया
स्मार्ट तो विचार
कोई भी हम लोग मुझे ऐसा न कहें जैसे ये स्मार्ट, उनको तो भक्ति का प्रजा इसलिए कृष्ण रणंत शक्ति ताते तीन प्रकांड। राधा जी की महिमा वर्णन करने के लिए यह सब जानना पड़ेगा, भगवान का भजन करने के लिए कृष्ण का भी जो बतलाया वो जानना पड़ेगा। कहे मैं नहीं जानता, हमको जरूरत है, हम तो माला सरकाएंगे बस हो जाएगा हमारा वृंदावन में सेवा कुंज में मैं झाड़ू दे मैं दूंगा बस यही करूंगा और वही और कुछ नहीं करूँगा। ये सब करने की क्या जरूरत है, ये सब जानने खानने की ये मुझको जरूरत नहीं, बस एकदम वहां से भाई ये नहीं होगा। जितना तुम इतना सहज समझ रहा है, साधन क्या हुआ, साधन में कष्ट क्या हुआ? खा पीना नहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, हवा नहीं खाएंगे, फल खाएंगे। अरे फल तू खाएगा, हमारा खर्चा है एक रुपये का एक दिन, अब तुम्हारा होगा 50-60 रुपया 100 रुपया एक दिन, तब तक तुम्हारा तुमने क्या किया? मान लिया कि किसी ने हवा नहीं खाया तो क्या किया, उसे क्या हुआ? राधा जी की महिमा जानने के लिए तुमने ठोस रूप में क्या किया? तुमने सब किया यहो बाज्य नौ की किया, इसे भगवान मिल जाएंगे, मैंने नहीं खाऊंगा, मैं चुपचाप रहूंगा, मैं प्राण प्रत्येक क्या करूंगा, तो उसे क्या होगा? ये सब तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे। तपस्या किसको कहते हैं? उसके लिए कष्ट उठाकर के भी सुना चंपति ठाकुर जी ने, जैसे वो राधा जी की कृपा काम गायत्री को अनुशीलन करने के लिए ये अक्षर क्या चीज है उसके लिए किया, उनका भाव क्या है, कैसे ये मिलेगा, रसिक वैष्णव का संग कैसे मिलेगा, ये होने के बाद ही राधा जी और कृष्ण मिलेंगे और कुंज में झाड़ू हाथ में मिलेगा। श्यामानंद कुंज में झाड़ू दे रहे थे, कैसे कैसे दिया, ऐसे ही दे दिया, जीव गोस्वामी जी के छात्र बनकर के उनकी सेवा की, इतना सहज है ऐसा भाव। वृंदावन में रह जाएंगे और हो जाएगा हमारा, तो हम लोग भी वृंदावन में रह करके बिना खाए पिए सेवा कुंज में वो चले जाते हैं शाम को, रात में रहते और सवेरे हमारी लाश वहां से निकल जाती, हमको मिल जाते झट झाड़ू देते देते, इतना सहज नहीं है भाई। इसको कहते हैं आराधना, जैसे सूतियों ने आराधना की कृष्ण के लिए, किस के लिए, गोपी बनने के लिए, कितना ब्रह्मा जी का कितना कल्प, ब्रह्मा जी कितने बदल गए तब तक ये तपस्या करते हैं, ऐसे तपस्या करनी हुई गुरु की सेवा से तपस्या आरंभ होती है। गुरु और वैष्णव वहीं से सेवा तपस्या होती है, उनके मन को प्रसन्न करने के लिए हम जो कुछ करेंगे वो यथार्थ तपस्या है। इसको छोड़ करके अपने मन से जो कुछ भी करेंगे वो कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए यदि हम लोग सचमुच में गुरु जी की प्रति विधान कर
सकें, नारद जी को पार मिली कैसे, बोले कि साधु की सेवा की इसलिए मिले, नहीं तो नहीं।
ठीक है,
सबसे हुआ दीर्घयापी और दीर्घयापी सबसे हुआ।
और नारद जी को इतना देर कैसे लग गया, क्या बतला रहा था?
वो कसाई की
कसाई, नारद जी को कसाई क्या था जो इतने दिन तक उनको रहना पड़ा,
गुरुवर्ण दर्शन नहीं दिया, बोले कि तुम इस जन्म में दर्शन नहीं पाओ, कि सात्विक वनवास
उनकी इच्छा थी जो मैं वन में वास करूंगा शांति और भजन करूंगा।
ये कुल में कोई रास्ता है,
इतना बड़ा बड़ी बात है। शुद्ध रसिक वैष्णव तत्व यदि हो उनके साथ में मरेंगे मर जाएंगे, किंतु उनके संग में रह करके ऐसे भावों की पुष्टि करेंगे और इसको कहते हैं साधन, उपयुक्त साधन आराधना। और अपने मन से हम करेंगे तो कुछ जानते तो हैं, खूब बैराग्य कभी आदि कभी, और क्या करेंगे, क्या करेगा तू अपने मन से, क्या करेगा तू, कुछ भी नहीं, वहां की धूली उठा करके लगाएगा। वो नियम है जमुना राधा कुंड में तुम स्नान करेगा ना रहेगा, तो राधा कुंड में डूब मरो तभी होगा, भाई नहीं होगा। इसलिए वैष्णव चरणों की सेवा करते हुए सचमुच में साधन, उपयुक्त साधन भजन करो। हम लोगों को जो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जो कुछ भी हुआ गुरु वैष्णव की सेवा से, इसीलिए हम लोग टिके हुए। तुम लोग भी इसी पथ पर चलो, कभी भी इधर उधर मन मत करो, इधर उधर नहीं तो सब जंजाल हो जाएगा। इसलिए इन सबको जानना पड़ेगा। ये ऐसे ही उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिख करके और ये ग्रंथ ने लिख दिया। अब हम लोग देखते हैं इसको ग्रंथों को, कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म की कितनी सुकृति है और गुरु वैष्णव की कृपा थी, ये सब में हम लोग का धीरे धीरे अब रुचि लगने लगी है, प्रवेश होने लगा, इनको जानने की उत्कंठा हो रही है। इस जन्म हो दूसरे जन्म हो तुम लोग को भी जब तक ये चीजें नहीं आएगी तब तक इस भक्ति रसामृत सिंधु में जाने का प्रवेश नहीं होगा, ये समझ रहे। इसलिए इसको कहते हैं आराधना। इनको कैसे हम समझें, और जब विद्या से नहीं होगा कैसे होगा, उनकी शुश्रूषा से, हरि गुरु वैष्णव की शुश्रूषा से हमारे हृदय में जो भावना, उस भावना के द्वारा ही और किसी के। इसलिए कहते हैं कि अनंत शक्तियां एक शक्ति पराशक्ति से, और पराशक्ति के एक ही के विविध प्रकाश हैं, उनमें विविधों में से तीन प्रधान है, ये जानना पड़ेगा, इतना तो जानना ही पड़ेगा, नहीं तो राधा जी को समझेंगे कि जगत की कोई बस इसके अतिरिक्त नहीं जान सकते। अब यहाँ आज तक इसी को अंतरंगा बहिरंगा तथा शक्ति कहे जा रहे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सबार्थी। अब अगले दिन इसकी हम लोग क्या करें, वह मन से सुनो भजन करो आगे आगे, इन सब चीजों को समझने की चेष्टा करो हृदय में, कहीं दौड़ भाग इधर उधर मत करो अधिक। वो सब कब करना चाहिए, जबकि संग न मिले तो खूब गोवर्धन जाओ, राधा कुंड में रहो, किंतु यदि कोई वैष्णव मिल जाए तो भाई ये सब सर्वान कामान विहाय
चिरंधित व्रता
विहाय, सबको छोड़ो, सब आकांक्षा इत्यादि सब छोड़ करके सुजोग से वो ऐसा संग मिला, और कल यदि न मिले तो बस हो गया भजन साधन। इसलिए साधन भजन करो भगवान को प्राप्त, पंचा कल्पतरुभ्यश्च प्रकाशम्।